नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो किसी धमाके की तरह है। मतलब दिल दहलाने वाला, हिंसक और साथ ही बेहद मार्मिक भी। हम बात कर रहे हैं ऐसे कॉस्बी के रेज़रब्लेड टीयर्स की।
कॉस्बी का आज के अमेरिकी क्राइम फिक्शन में एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी एक एक अलग ही पहचान है।
और वो पहचान है सदर्न नोयर की, है ना?
बिल्कुल, सदर्न नोयर, या जिसे हम रूरल नोयर भी कह सकते हैं, मतलब वो अपराध कथाएं जो अमेरिका के दक्षिणी ग्रामीण इलाकों में बसी होती हैं।
अच्छा।
और ये सिर्फ जासूसी कहानियां नहीं होती, इनमें आप देखिए वहां का माहौल, गरीबी, नस्लीय तनाव, समाज की जो सड़ांध है, वो खुद कहानी का एक किरदार बन जाती है।
सही कहा। और रेज़रब्लेड टीयर्स तो इसी शैली का एक बेहतरीन नमूना है। ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, ये दो पिताओं के प्रायश्चित का सफर है।
हाँ,
आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि कैसे दो ऐसे पिता जो जीते जी अपने बेटों को उनके समलैंगिक होने की वजह से पूरी तरह अपना नहीं सके, उनकी मौत का बदला लेकर अपने लिए मुक्ति का एक नया रास्ता खोजते हैं। ये कहानी इस सवाल की पड़ताल करती है कि क्या हिंसा कभी
घावों को भर सकती है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है।
बिल्कुल।
कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी खबर से होती है जो किसी भी माँ बाप के मतलब दुनिया उजाड़ दे। वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में दो युवकों, इसाया रैंडोल्फ और डेरेक जेंकिंस, की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है।
और वो सिर्फ दोस्त नहीं थे।
नहीं, उन्होंने शादी की थी, वो एक दूसरे के जीवन साथी थे। और इसी त्रासदी के बाद ही उनके पिता आइक रैंडोल्फ और बड़ी ली जेंकिंस पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं।
और पहली ही मुलाकात से साफ हो जाता है कि ये दोनों, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हमें आइक दिखता है जो काफी हद तक अपनी जिंदगी पटरी पर ले आया है,
और दूसरी तरफ बड़ी ली है जो अब भी अपने अतीत के दलदल में धंसा हुआ है।
ये टकराव कहानी के लिए बहुत जरूरी है।
हाँ, जरा इन किरदारों के बारे में और बताइए। बिल्कुल, तो आइक रैंडोल्फ एक अश्वेत व्यक्ति है, उसका अतीत दागदार रहा है, वो 7 साल जेल में काट चुका है, लेकिन अब वो एक सफल लैंडस्केपिंग का व्यवसाय चलाता है।
अच्छा।
उसने अपनी जिंदगी को संवार लिया है। वो स्वभाव से शांत और नियंत्रित है, अपने जज्बातों पर जैसे एक पर्दा डालकर रखता है।
और बड़ी ली?
बड़ी ली जेंकिंस एक श्वेत व्यक्ति, वो भी पूर्व अपराधी है, लेकिन उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। वो एक जर्जर ट्रेलर में रहता है, शराब में डूबा हुआ और नस्लीय पूर्वाग्रहों से पूरी तरह भरा हुआ,
मतलब गुस्सैल और मुंह फट
बहुत ज्यादा, और उसकी दुनिया बहुत छोटी है।
उनकी पहली मुलाकात में जो खामोशी है वो किसी चीख से ज्यादा असरदार है। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। ये सिर्फ अजनबियों के बीच की असहजता नहीं है, ये कुछ और है ना?
ये शर्म है, एक साझा शर्म जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। दोनों ही अपने बेटों के रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाए थे। वो अपने बेटों से प्यार तो करते थे, लेकिन उनका प्यार शर्तों के साथ आता था।
जैसे
आइक चाहता था कि उसका बेटा मर्द बने, और बड़ी ली के लिए तो ये रिश्ता ही अप्राकृतिक था। अब जब उनके बेटे नहीं रहे तो ये अपराध बोध उन्हें जिंदा जला रहा है
कि उन्होंने अपने बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त अकेला छोड़ दिया।
बिल्कुल, और यही हमें सदर्न नोयर का असली रंग दिखता है। जब पुलिस की जांच धीमी पड़ जाती है तो ये सिर्फ पुलिस की नाकामी नहीं है।
नहीं, ये उस व्यवस्था की उदासीनता है जो दो समलैंगिक पुरुषों, जिनमें से एक अश्वेत था, की हत्या को प्राथमिकता नहीं देती।
उसे बस एक और फाइल मानकर किनारे रख दिया जाता है।
हाँ, पुलिस के लिए ये शायद एक नफरती अपराध था या लूटपाट का मामला, उन्हें कोई जल्दी नहीं थी।
और इसी धीमी पड़ती न्याय की उम्मीद ने इन दो पिताओं को
एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। हाँ।
ये कोई दोस्ती की शुरुआत नहीं थी, ये मजबूरी का एक गठबंधन था जो अपराध बोध की नींव पर खड़ा था।
और ये गठबंधन एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेता है। आइक बड़ी ली के ट्रेलर पर जाता है। सोचिए वो दृश्य, एक सफल सधा हुआ अश्वेत व्यक्ति एक बिखरे हुए गरीब श्वेत व्यक्ति के दरवाजे पर खड़ा है, और वहां दो टूटे हुए पिता, दो पुराने अपराधी एक दूसरे के सामने बैठते हैं, और आइक एक प्रस्ताव रखता है
कि अगर कानून हमें न्याय नहीं देगा तो हम खुद लेंगे।
हाँ।
और बड़ी ली, जो शायद अपनी पूरी जिंदगी आइक जैसे किसी व्यक्ति से नफरत करता रहा होगा, वो मान जाता है।
क्यों?
क्योंकि उसे पता है कि आइक सही कह रहा है, और उसे यह भी पता है कि उसके अंदर की जो आग है उसे शांत करने का यही एक रास्ता बचा है। यहीं से उनके हिंसक सफर की शुरुआत होती है।
और ये बहुत दिलचस्प है ना कि हिंसा इन दोनों के लिए बातचीत का एक तरीका बन जाती है।
हाँ हाँ बिल्कुल,
वे एक दूसरे से या अपने आप से ये नहीं कह पाते कि मुझे बहुत दुख है या मैं एक बुरा बाप था।
लेकिन वो किसी का दरवाजा तोड़कर ये जरूर कह सकते हैं कि मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए।
हिंसा उनकी भाषा बन जाती है।
बिल्कुल। और कॉस्बी यहीं पर दिखाते हैं कि मर्दानगी का ये जहरीला रूप कैसे काम करता है। ये आपको दुख महसूस करने के औजार तो छीन लेता है, पर गुस्सा करने का हथियार थमा देता है।
और आइक और बड़ी ली के पास सिर्फ वही एक हथियार बचा है।
जी, उनकी जांच का तरीका किसी जासूसी फिल्म जैसा नहीं है। वे सुराग नहीं जोड़ते, वे हड्डियां तोड़ते हैं। वे अपने पुराने हिंसक दिनों में लौट जाते हैं और शहर के अपराधियों से सच उगलवाने के लिए हर हद पार कर जाते हैं।
और हर टूटी हुई हड्डी उन्हें सच्चाई के एक कदम और करीब ले जाती है। उन्हें धीरे धीरे ये एहसास होता है कि उनके बेटों की हत्या उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिख रही थी। ये सिर्फ एक नफरती अपराध नहीं था।
नहीं, उन्हें पता चलता है कि उनके बेटों के पास कोई ऐसी जानकारी थी, एक वीडियो था जो शहर के कुछ बहुत शक्तिशाली और खतरनाक लोगों के राज खोल सकता था।
और इसी खोज में उनका सामना होता है रेयर ब्रीड से।
हाँ, एक श्वेत वर्चस्ववादी मोटरसाइकिल गैंग।
यहाँ कहानी एक बहुत ही विस्फोटक मोड़ लेती है। ये टकराव सिर्फ एक्शन के लिए नहीं है, ये किरदारों के विकास के लिए बहुत जरूरी है।
बिल्कुल।
देखिए यहाँ की विडंबना देखिए। बड़ी ली, जो खुद नस्लीय पूर्वाग्रहों से भरा है, अब एक अश्वेत व्यक्ति आइक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्वेत वर्चस्ववादियों की पूरी फौज से लड़ रहा है।
ये एक जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें दोनों की जान जाते जाते बचती है। और इसी लड़ाई के मैदान में जब वो एक दूसरे की जान बचाते हैं तो उनके बीच की वो नस्लीय और सामाजिक दीवारें वो दरकने लगती हैं।
उन्हें पहली बार एहसास होता है कि उनके दुश्मन का रंग देखकर नफरत करना कितना बेमानी है,
जब उनका दर्द एक ही है।
बड़ी ली को आइक की आंखों में वही दर्द दिखता है जो वो खुद महसूस कर रहा है।
और यही उपन्यास का शीर्षक रेजर ब्लेड टीयर्स यानी धारदार आंसू अपनी पूरी गहराई के साथ सामने आता है। ये उस दुख का प्रतीक है जो इतना शर्मनाक और दबा हुआ है कि आंसू भी बाहर आने पर त्वचा को किसी ब्लेड की तरह काटते हुए महसूस होते हैं।
ये विषाक्त मर्दानगी का एक शक्तिशाली रूपक है।
सही बात है। इन दोनों को सिखाया गया है कि मर्द रोते नहीं, वो लड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि उनका दुख आंसुओं में बहने के बजाय अंदर ही अंदर सड़कर हिंसा बन जाता है।
रेयर ब्रीड गैंग से हुई मुठभेड़ के बाद उन्हें ये तो पता चल जाता है कि ये गैंग सिर्फ किराए के गुंडे थे।
हाँ, असली खिलाड़ी कोई और है जो पर्दे के पीछे छिपा है। आखिरकार और हिंसा और खून खराबे के बाद हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आती है।
और ये सच्चाई कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है ना।
हाँ,
पूरी कहानी में हमें लगता है कि ये एक नफरती अपराध है, कि उनकी समलैंगिकता की वजह से उन्हें मारा गया, लेकिन असलियत कुछ और ही निकलती है।
बिल्कुल। असलियत ये थी कि उनके बेटों इसाया और डेरिक के पास एक वीडियो था जिसमें शहर का एक अमीर और प्रभावशाली व्यवसायी जेराल्ड एक युवती के साथ बलात्कार कर रहा था।
और उनके बेटे ब्लैकमेलर नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वे उस वीडियो का इस्तेमाल उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए करना चाहते थे। वे सही काम करने की कोशिश कर रहे थे।
और इसी वजह से वो मारे गए, अपने समलैंगिक होने की वजह से नहीं,
बल्कि एक अच्छे और बहादुर इंसान होने की वजह से।
ये जानना उन दोनों पिताओं के लिए किसी सदमे से कम नहीं था।
ये उनके दिल को तोड़ कर रख देता है। उनका दुख और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने बेटों को कितना गलत समझा।
लेकिन इसी दुख से उनका संकल्प फौलादी हो जाता है।
हाँ, अब बदला लेना सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक पवित्र कर्तव्य बन जाता है। उन्हें अपने बेटों के सम्मान के लिए लड़ना ही होगा।
और फिर आता है कहानी का चरमोत्कर्ष। जेराल्ड की आलीशान और भारी सुरक्षा वाली हवेली पर आइक और बड़ी ली का धावा।
ये महज एक लड़ाई नहीं है, ये प्रलय है। लेखक ने इस हिस्से को जिस तरह लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। ये हिंसा का एक ऐसा तूफान है जिसमें वे अपना सारा गुस्सा, दुख, अपराध बोध और दर्द झोंक देते हैं। वे एक सेना की तरह लड़ते हैं
हर उस सुरक्षा गार्ड को खत्म करते हुए जो उनके रास्ते में आता है।
हाँ, अंत में वे खून में लथपथ, बुरी तरह जख्मी हालत में जेराल्ड तक पहुंचते हैं और अपना बदला पूरा करते हैं।
लेकिन इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। दोनों मौत के दरवाजे से लौट कर आते हैं।
बदला पूरा हो गया, हत्यारे मारे गए, लेकिन क्या इससे वो खालीपन भर गया जो उनके बेटों के जाने से पैदा हुआ था? क्या उन्हें वो शांति मिली जिसकी उन्हें तलाश थी?
नहीं, बदला लेने से दुख कभी खत्म नहीं होता। कोई भी हिंसा उस दर्द को नहीं मिटा सकती।
लेकिन एक चीज जरूर हुई।
क्या?
उनके अंदर का अपराध बोध धुल गया। उन्होंने अपने बेटों के लिए आखिरी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने वो कर दिखाया था जो एक पिता को करना चाहिए था, भले ही बहुत देर से।
तो फिर उनका असली प्रायश्चित कहाँ होता है? अगर हिंसा में मुक्ति नहीं है तो फिर कहाँ है
उनकी असली मुक्ति? हत्या में नहीं, बल्कि उसके बाद मिली जिम्मेदारी में है। उनके बेटों की एक 3 साल की बेटी भी थी, एरियाना।
अच्छा।
जिसे वे अब तक अपनाने से हिचकिचा रहे थे। कहानी के अंत में अस्पताल के बिस्तर पर पड़े टूटे हुए शरीर के साथ वे उस बच्ची के दादा बनने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।
ये अंत मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि बदला लेने की पूरी कहानी के बाद असली हीरोइज्म उस बच्ची को पालने की खामोश जिम्मेदारी में है।
सही कहा।
हिंसा से कुछ नहीं बदला, लेकिन इस एक फैसले से एक नया भविष्य बनता है। ये बहुत शक्तिशाली संदेश है।
बिल्कुल। उपन्यास कांत दो टूटे हुए इंसानों के साथ होता है, एक अश्वेत एक श्वेत, जो अपने बेटों के छोड़े हुए बच्चे को पालने के लिए एक नए तरह का परिवार बनाते हैं।
ये उस बिना शर्त प्यार का प्रतीक है जो वे अपने बेटों को कभी नहीं दे पाए।
हाँ, वे एरियाना को वो सब कुछ देना चाहते हैं जो वे इसाया और डेरिक को देने में नाकाम रहे। उनका रिश्ता अब मजबूरी का नहीं, बल्कि एक गहरे भाईचारे और सम्मान का है। वे साथ मिलकर एक नया भविष्य बनाने का फैसला करते हैं।
तो ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रायश्चित सिर्फ अतीत की गलतियों को मिटाने का नाम नहीं है,
बल्कि उस राख से एक बेहतर भविष्य बनाने का नाम है।
और ये भी कि प्रेम को उसकी पूरी गहराई में समझने के लिए और एक बेहतर इंसान बनने के लिए कभी कभी सबसे अंधेरे और हिंसक रास्तों से गुजरना पड़ता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।